सुधीजनों, देवियों, आज हम पितृ दिवस मतलब फादर्स डे मना रहे हैं। दुनिया में ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि में बड़ी विचित्रता है। ईश्वर खुद ने सृष्टि नहीं बनाई है, ईश्वर तो सृष्टि बनने का एक तरफा है, दूसरी प्रकृति है। ईश्वर और प्रकृति दोनों से ये सृष्टि बनी है और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सृष्टि की प्रक्रिया कि कोई भी चीज अकेले पुरुष या अकेले स्त्री से बनी नहीं सकता, दोनों से बनेगी। कोई भी काम दोनों से होगा, एक से नहीं होता है। कभी एक से होता है तो एकांगी होता है। इसीलिए वो पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, जिस बीज से बनते हैं उसमें भी दो टुकड़े होते हैं। तो दोनों के समन्वय से सृष्टि होती है। और इसी तरह हमारे जीवन में हमारे माँ बाप दोनों भूमिकाएं निभाते हैं। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, महाभारत में युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि कौन बड़ा है, मां बड़ी है या पिता बड़ा है। ये देखिए, दो हंस है, बीच में उनका बच्चा है, दोनों गाइड करते हैं। तो मार्कंडेय उत्तर देते हैं, दुनिया में आमतौर पर कुछ लोग मानते हैं कि मां बड़ी है, कुछ लोग मानते हैं कि पिता बड़ा है। ये जरूर है कि मां का जो काम है वो ज्यादा मुश्किल है। प्रजाओं को जो जन्म देती है, उनको पालती है। मातृस्तु गौरवाधन्नी पितृ नन्नी तुम्हें निरे। कुछ लोग मानते हैं कि मां बड़ी है, कुछ मानते हैं पिता बड़ा है। दुष्करम कुरुते माता विवर्धयति या प्रजाः। क्योंकि वो काम मुश्किल है मां का, पर पिता का काम क्या है, मार्कंडेय समझाते हैं। तपसा देवते ज्याभिवंदने न तितीक्षया सुप्रशस्ते रूपायेश्चा पीहन्ते पितर सुतान। ये महाभारत की कथा है। कहते पिता को अपने बच्चे के लिए क्या करना होता है वो बच्चों को कम पता लगता है। कितनी वो कितना कष्ट उठाता है, मेहनत करता है बाहर, कितनी देव देवी देवताओं का मंदिरों में पूजा करता है अपने बच्चे की भविष्य के लिए, कितने बड़े से छोटे छोटे लोगों के सामने हाथ जोड़ता है, अभिवंदन करता है कि मेरे बच्चे का भविष्य बने, और कितने सुख दुख सर्दी गर्मियों को सहता है, और अच्छा बुरा कितने तरह के उपाय बनाता रहता है सिर्फ इसीलिए कि मेरे बच्चों का कुछ अच्छा हो। इसीलिए मार्कंडेय ने कहा, यह मैं नहीं कह सकता मां बाप में से कौन बड़ा है, पर जरूर है कि मां का कष्ट ज्यादा है, क्योंकि दोनों को हम तुलना नहीं कर सकते। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, दोनों अपने आप में अतुलनीय है, और इसीलिए बच्चे को दोनों चाहिए। बच्चे को मां बाप दोनों चाहिए होते हैं। वो किसी एक, कोई भी बच्चा केवल मां से या केवल बाप से पला हो, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से जरूर विकलांग होता है। मतलब उसका जो विकास है वो अधूरा हमेशा रहता है, क्योंकि जो मानसिक तृप्ति है, जो पूर्णता है, वो पुरुष और स्त्री, पिता और माता दोनों से आती है। दोनों का स्वभाव जरूर अलग अलग है। खास करके दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मिसअंडरस्टूड पर्सन है, वो मुझे तो यहां का पता नहीं, वो भारत के पिता लोग हैं। क्योंकि मां प्यार करती है और प्यार दिखाती है। आजकल तो आप लोग थोड़ा बदल गए हैं, वेस्टर्न स्टाइल का है ये, मैं नहीं जानता कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है, पर आप जिन पिता माता से पले बड़े हैं, पिता बड़ा, पिता का जो पहचान होता है वो बड़ा कठोर, कभी भी बेटे से तो कम से कम प्यार से नहीं बात करने वाला, बेटी से तो कर ले, बेटे से तो हमेशा खड़ करके बोलने वाला। पर मां को पता होता है बेटे को डांटने के बाद बाप बिस्तर पर कैसे रोता है, उस बच्चे को तभी पता लगता है कि मेरा बाप रोता था जब वो खुद बाप बन के अपने बेटे को डांटता है। पर समस्या है पिता की, पिता मर्द है वो रो नहीं सकता। इसीलिए खास करके जो टीनेज के बच्चे हैं, जो किशोर उम्र के बच्चे हैं, वो बाप से ज्यादा चिढ़ते हैं। आजकल के बाप से कम, क्योंकि वो तो आप वो क्योंकि ये एक अलग टाइप का परवरिश है, दुनिया में अलग अलग टाइप के बच्चे पालने की अपने अपने विचार है, एक वेस्टर्न है, एक ईस्टर्न है। ईस्टर्न का मतलब केवल इंडियन नहीं है, वो इंडिया में जिस तरह के परवरिश है उसी तरह के चाइना में जापान में मिलेगा कि बाप थोड़ा कठोर होगा, मां थोड़ी सॉफ्ट होगी। इसीलिए वेद में कहता है कि पिता द्यौः पृथ्वी माता, पिता कैसा है आकाश की तरह है, मां कैसी है पृथ्वी की तरह है, सब सह जाती है, हर तरह की बदमाशियों को सहकर भी खिलाती पिलाती है पृथ्वी की तरह। आप पृथ्वी को कितना नोचते हो, खोदते हो, कुछ भी करते हो, उसके बावजूद पृथ्वी हमें पालती है। पर बाप आकाश की तरह है, ऊंचा है, वो डांटता है, फटकारता है, रोकता है, पर वो प्रोटेक्ट करता, सुरक्षा उसी से होता है। जिस घर में बाप होता है वो बच्चे अपने आप को मानसिक रूप से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। ये जो सुरक्षित है, प्रोटेक्ट करना, पिता शब्द जो जो बाप को जो पिता कहते हैं संस्कृत में, वो पिता का मतलब यही है, जो रूट से बना पा धातु से, उसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, रक्षा करना, बचाना। तो जिन बच्चों के, जो बच्चे अपने बाप के नीचे पलते हैं, उनका सुरक्षा का बोध ज्यादा होता है। भारत में जिन पिताओं की बात मैंने की, हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि भारत का समाज जो है वो चार वर्गों में बंटा है, एक गरीब है, एक निम्न मध्यवित्त जिसको आप कहते हैं लोअर मिडिल क्लास है, एक मध्यवित्त है मिडिल क्लास है, एक हायर मिडिल क्लास है, एक रिच है। सबकी स्टाइल अलग होती है क्योंकि जरूरतें अलग है। गरीब बाप मजदूरी पर जाता है, जब शाम को आता है 50 रुपए 60 रुपए मजदूरी लेकर के, उसको रोज आटा चावल जो भी तेल मसाले दाल लाना होता है, 10 रुपए का चावल, 5 रुपए का तेल, वो पूरा नहीं होता है परिवार को कभी कभी, पर उसके बावजूद भी उसमें से 1 रुपए बचा लेता है बच्चे के लिए टॉफी लाने के लिए। मेला में जाता है, पॉकेट में इतना पैसा नहीं होता है, बच्चा रोता है तो बाप के दिल को अगर कोई एक्सरे करे उस गरीब बाप को, आप देखेंगे वो कितना अंदर से टूटता है जब वो अपने बच्चे को खिलौना नहीं दे पाता है। उस उसकी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी पैसा है वो खाना कम खाए बच्चे के लिए ज्यादा आए। वो खुद अनपढ़ होता है, बच्चे को स्कूल भेजता है क्योंकि उसको पढ़ने लिखने का तरीका पता नहीं है, बस डांटता रहता है बीच बीच में, पढ़ लिख लिया करो। और भारत में ज्यादातर जो बड़े लोग बने वो गरीब और अनपढ़ लोगों से, वो लोगों के बच्चे हैं। बच्चे को कभी ये समझ में आया ही नहीं कि उसके बाप ने उसके लिए क्या, उसको तो ये दिखा कि मां की क्या, मां का क्या त्याग है, क्या प्यार है। पर बाप के पास ना इतना समय होता था, ना वो जो मर्द की जो भावना है वो उसको कभी सामने लाने देता था। जो मिडिल क्लास के बाप होते हैं वो थोड़ा और विचित्र होते हैं। स्कूल से बच्चा आता है, रिजल्ट निकलता है, बच्चा वैसे ही डरा रहता है बाप से, वो मां से बोल देता है अच्छा नंबर आया, कम नंबर आया। मां कहेगी भाई बाप को तो बताओ, अगर नहीं बताया बाप डांटता है। गया, हाँ क्या है, रिजल्ट निकला है, क्या किया, 65% आया, क्यों फेल होकर आ जाता, मम्मा को बोल दो 2000 गाय बकरी खरीद ले, चराएगा, क्या करेगा। बेटे को लगा बाप दुखी है, चिढ़ता है, बेटा नाराज होकर चला गया मां को बोल करके, पापा को समझा दो ऐसी बार बार मत बोला करे, पेंशन नंबर कम होता है। मां समझाती है बाप को, क्या क्यों ऐसे बोलते हो, क्या करे, स्वभाव है, उत्तर नहीं होता है, आगे क्या करेगा जी, इंजीनियरिंग करेगा, टेस्ट दिया था आज फेल हो गया, ठीक है गाय चराओ। मम्मा को पूछता है पीछे जाकर पापा, क्या करें इसका, तो कह रहा था प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेगा, 5 लाख रुपए डोनेशन मांगते, अच्छा इतनी तो कमाई नहीं है, 2 एकड़ जमीन है, 2 बच्चे हैं, 1 एकड़ बेच लेते हैं। जमीन बिक जाता है, बच्चे को पता नहीं चलता, 5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाते हैं, पर अब भी बेटे से धमका कर बोलता है कब जाना है, जो परसों है इंटरव्यू, तैयार हो जाना, टिकट कर लेना। इसीलिए बच्चे को कभी समझ में आता ही नहीं है कि बाप उसे कितना प्यार करता है। जमीन बिक जाता है, घर बिक जाता है, पर सामने वो उसी तरह करके बोलता है। ये हिंदुस्तानी मिडिल क्लास बापों का लक्षण है, आजकल बदल रहे हैं। अरे ये परंपरा रही है, ये हमारी भारतीय बच्चे पालने की एक तरीका रही है। गुरु और बाप बच्चे से थोड़ा प्यार दिखाएं कम, ऐसा भारतीय परंपरा में माना जाता था। मुद्रा राक्षस में एक नाटक, चाणक्य के ऊपर एक पुस्तक है, चाणक्य व्यस्त है चंद्रगुप्त के राज्य के शत्रुओं को नष्ट करने में, उसकी राजनीति कूटनीति बनाने में, पर वो तो गुरुकुल का आचार्य है, गुरुकुल में पढ़ाता है, शाम को गुरुकुल ही आता है, वो झोंपड़ी में रहता है, और एक दिन आकर के अपने शिष्यों से बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं कुछ दिनों से व्यस्तताओं के कारण तुम लोगों के ऊपर गुरु सुलभ कोप नहीं कर पा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, कोप का मतलब गुस्सा, प्यार नहीं बोला, और मैं आप पर वो गुरु सुलभ गुस्सा नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए माफी मांगता हूं। मतलब उनके जहन में है कि बच्चों को गुस्सा करना जरूरी है, ऐसा उनको लगता था, वो उनकी भलाई के लिए करते थे, साइड में मां होती थी प्यार करने के लिए, तो बैलेंस बनता था। केवल सूरज से दुनिया नहीं चल सकती, सूरज भी हमें गर्मी के लिए चाहिए, रात को चांद भी चाहिए शीतल रोशनी देने के लिए। इसलिए जब आप लोगों की शादी हुई होगी और जो मंत्र पढ़ते समय पति पत्नी एक दूसरे को बोलते हैं कि मैं आकाश हूं तुम पृथ्वी हो, पति पत्नी को बोलता है, मैं ऋक हूं तुम साम हो, ऋक ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान कड़वा होता है, ज्ञान कभी आसान नहीं होता, तुम साम हो, साम गीत है, संगीत है, सुनने में अच्छा लगता है, मां की तरह है, कोमल है, तुम साम हो मैं रुक ऋग्वेद हूं, तुम पृथ्वी हो मैं देवलोक हूं, तुम चांद हो मैं सूरज हूं। इसके पीछे वो रहस्य छुपा है परिवार को पालने का। इसलिए मैंने कहा दुनिया में भारतीय जो बाप होते हैं, जो भारत के तरीके से पालते हैं, जैसे हम पले हैं, हमेशा अपने जवानी में बाप को गलत समझते हैं। मैं जब खुद गांव का हूं, जब दिल्ली आया पढ़ने लिखने, दो चार साल वह पढ़ा, तो एक बार जो दिल्ली से गांव गया, अपनी बड़ी दीदी से मैंने बोला, हमारे पिताजी हमें कभी नहीं प्यार करते हैं। क्यों? मतलब मैंने देखा टीवी में, सीरियल वगैरह में देखता हूं, बाप बेटे कैसे प्यार करते हैं, बैठते हैं, हमारे पिताजी तो कभी ऐसा किया ही नहीं, जब देखो उखड़ के रहते हैं। मेरी दीदी पढ़ी लिखी नहीं थी ज्यादा, पर शायद मेरे से ज्यादा समझदार थी। बोला, समझ गया तू दिल्ली रहकर आया है ना, तो तुझे फिल्मी स्टाइल में पापा का प्यार चाहिए। उसने बोला, हम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं। बोला, वो स्टाइल क्या है मुझे नहीं पता, तुम कौन से स्टाइल देख कर आओ फिल्म में, कैसे बाप बेटे के गल कंधे पर हाथ रख कर आता है, पर स्टाइल कोई भी हो, तेरे पिता तेरे लिए भी रोता है, तुम्हारे पढ़ाई के लिए भी जमीन बेचा था, तुम्हारे लिए भी घर बेचा था, तुम्हारे पीछे भी वो रोता रहता है। प्यार करने की तरीका अलग है, पर प्यार करता है, पर हमें समझ में कम आता है। इसीलिए अभी जो स्मृति जी कह रही थी पिताओं के बारे में, कविताएं कम होती है, इसीलिए नहीं कि पुरुष लिखते हैं, इसीलिए कि पिता मिसअंडरस्टूड होता है, खास करके भारत में। ऐसा यहां नहीं है, क्योंकि यहां पिता माता दोनों बराबर तरीके से पालते हैं और इसीलिए यहां दोनों का वो है, पर भारत में हमेशा पिता कम समझा हुआ माना जाता है। दोनों की, पिता और माता की जो भेद है, पिता हमेशा चाहता है कि बच्चा आगे बढ़े, जितना ज्यादा उन्नति करे, उसकी जोर है कि तुम कितना पढ़ते हो, कितना रिजल्ट लाते हो, कितना बड़ा अफसर बनते हो। मां का जोर है कि तुम ठीक हो कि नहीं, जब भी आए ये दुबला पतला हो गया, वो सरकारी तौर पर मेडिकल रिपोर्ट में हो सकता है उसमें ओबेसिटी हो, मोटापा आ गया हो, पर मां को अब भी लगता है तो 15 दिन रहकर आया, खाया पिया ठीक से नहीं है क्या, दुबला पतला हो गया। मां उसका पालन पोषण पर ध्यान देती है, बाप उसके विकास पर ध्यान देता है। आप कहेंगे हम तो ऐसा नहीं, हम मिलजुल के करते हैं, वो कल्चरल डिफरेंसेस आ चुका है। दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता ऐसा है जिसमें हारना खुशी देता है, वह है बाप और बेटे का। जब बाप बेटा बाप से आगे बढ़ जाता है, पढ़ाई में, धन में, ज्ञान में, यश में, शरीर में, किसी भी रूप में, बाप को खुशी होती है। दुनिया में कोई भी रिश्ता, दोस्तों की रिश्ता हो और कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं जहां कोई बढ़े तो जलन ना होता हो, दुख ना होता हो, सिर्फ बाप ही होता है जो बेटे के बढ़ने पर खुशी मनाता है, जमीन बेचकर बच्चे को पढ़ाता है, बच्चा बहुत पढ़ लिख जाता है, अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदता है, बाप अब भी गांव में रहता है, गांव वालों को बताता है मेरे बेटे ने मर्सिडीज खरीदा है, पता है, खुद साइकिल में जाता है। फिर उसको खुश, वो साइकिल उसको दिखता नहीं, वो खुश खुश है क्योंकि उसका बेटा मर्सिडीज चढ़ रहा है, उसका बच्चा चढ़ रहा है। पर वो गांव में वही दाल रोटी खाता है, साइकिल चढ़ता है, कोई दुनिया जिंदगी में कभी फिल्म नहीं देखा होगा, कोई रेस्टोरेंट नहीं गया होगा, वो गमछा पहनकर घूमता है, पर उसको खुशी है कि उसका बेटा बड़ा बन गया। मां तो रो पड़ती है, बाप रो भी नहीं सकता, इसलिए उसको हजम करता है। इसीलिए कहा महाभारत में, किम यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर से 100-200 सवाल पूछता है, उनमें से एक सवाल यह था, किम स्वित गुरुतरा भूमि है, जमीन से क्या भारी है, किम सित उच्चतरम चखात, आकाश से क्या ऊंचा है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माता गुरुतरा भूमि, मां पृथ्वी से भी ज्यादा भारी है, पिता चोच्चतरम चखात, पिता आकाश से भी ऊंचा है। इसी को मनुस्मृति कहता है, पिता मूर्ति प्रजापति है, पिता जो है वो इमेज है सृष्टिकर्ता का, द फादर इज द इमेज ऑफ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जिसने संसार बनाया परमात्मा, उसका अगर आप कोई रूप देखना चाहें तो पिता के रूप में दिखेगा। इसी को शतपथ ब्राह्मण में कहा दूसरे ढंग से, मातृमान पितृमान आचार्यवान वेद, वही पुरुष पुरुष है, वही इंसान इंसान है जो मातृमान है, जो पितृमान है, जो आचार्य, जो मां को समझता है, जो बाप को समझता है, जो आचार्य को समझता है। भारत की संस्कृति में और एक तीसरा खंभा है जो जो इधर नहीं दिखता, वो है आचार्य। आचार्य मतलब टीचर, जो आपका गुरु है, जो अपने मां को नहीं समझता, समझता मतलब उनके उनके योगदान को नहीं समझता, जो अपने बाप के योगदान को नहीं समझता, जो अपने गुरुओं के योगदान को नहीं समझता, वो पुरुष पुरुष ही नहीं है। इसीलिए आपके यहां हमारे यहां जो पांच महायज्ञ सभी सभी गृहस्थियों के लिए निश्चित है, उनमें एक पितृ यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ और पितृ यज्ञ। ये पितृ यज्ञ क्या है? अब लोगों ने पितृ यज्ञ पर क्या किया, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण को बोला ये है पितृ यज्ञ, सैकड़ों ब्राह्मणों को खिलाएंगे, खूब मंदिरों में दान दक्षिणा करेंगे, मरने के बाद गंगा में जाकर अस्थि बहाएंगे, वहां लाखों खर्च करेंगे, मरने के बाद। तर्पण का अर्थ होता है तृप्ति, सेटिस्फेक्शन, जीते जी तो कुछ भी, शादी हो गई, बीवी लेकर घूमने चले गए, बुढ़ा पड़ा है, जब देखो बुढ़ा पटर पटर करता रहता है, पढ़ने दो, वैसे कुत्तों को भी खिलाते हैं, उनको भी खिला देते हैं, और आजकल तो कुत्तों को और ज्यादा अपने बेडरूम में सुलाते हैं बड़े प्यार से, मां बाप को तो गैरेज में भी डाल देते हैं। पर मरने के बाद श्राद्ध तर्पण में कोई कमी नहीं छोड़ते, पूरा पैसा खर्च करते, पितृ यज्ञ निभाना है, ये बड़ा कमाल के हिंदू होता है। पितृ यज्ञ का अर्थ है पिता और माता को, पितृ से पिता माता दोनों आते हैं, संस्कृत में एक समास है, समास में दोनों को, जैसे अंग्रेजी में पेरेंट्स बोलते हैं और पति पत्नी को कपल बोलते हैं एक वर्ड में, इसी तरह संस्कृत में पिता माता को पितरौ बोलते हैं। जीते जी पिता माताओं को देना, उनको खाना पीना वस्त्र घर देना बुढ़ापा में, क्योंकि माँ बाप जो बुढ़े हो जाते हैं वो बच्चे के समान हो जाते हैं। बच्चे जो बच्चा था जवान हो जाता है, उसका काम होता है वो अपने बूढ़े माँ बाप को पाले, उनके साथ संगति करना, उनके साथ बैठना, बातचीत, दुख सुख शेयर करना और उनकी पूजा, उनका आदर करना। यज्ञ का तो यही अर्थ है ना, दान देव पूजा संगतिकरण। कोई भी यज्ञ में तीन चीजें होती है, जो आप यहां बैठे हो यहां भी तीन चीज होता है। आप कुछ देते हो, घी सामग्री वगैरह कुछ देते हो, अहंकार को त्यागना होता है। फिर देव पूजा, आप किसी देवता की पूजा करते हो और संगति, बहुत सारे लोग इकट्ठा, हवन कभी अकेला नहीं होता है, कम से कम पति पत्नी दोनों होना जरूरी है। इसीलिए जो गृहस्थ नहीं होता है उसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता है, ये पता है कि नहीं, ध्यान रखिए। सन्यासियों को यज्ञ कराने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि यज्ञ अकेला नहीं आता है। यज्ञ का अर्थ ही है कि संगति, जुड़ना। तो हर यज्ञ में ये तीनों दिखना चाहिए। तो पितृ यज्ञ क्या है? पिता को देना, उनका पालन पोषण करना। उन खाली देने से काम नहीं चलेगा, इसलिए कहते हैं संगति, कितने टाइम उनसे बिताते हो उनके साथ, और कितना रिस्पेक्ट करते हो, कितना आदर करते हो, कितना सम्मान करते हो। क्योंकि जो तीन ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, हर इंसान के जिंदगी में जब से पैदा हुआ उसके पास तीन लोन लेकर के पैदा होता है, उसको जिंदगी भर ये चुकाना है। अगर वो चाहता है कि मैं फ्री रहूं, मैं मुझे किसी तरह का कोई पाप ना लगे, एक तो पितृ ऋण, मां बाप की जो जो हमारे ऊपर जो योगदान है उसको चुकाना, ये मुश्किल है, पर उनकी सेवा करते रहने से हम अपने बच्चों के द्वारा सेवा के लायक बनते हैं। ऋषि ऋण, जो ज्ञान की परंपरा, गुरु परंपरा से ज्ञान आया, उस ऋण को चुकाना। तीसरा ऋण होता है देव ऋण, ये ईश्वर की और प्रकृति का जो हमारे पर मेहरबानी है, जो पेड़ पौधे नदी नाल आकाश धरती अनाज, ये जो कुछ भी हमारे लिए हमारे पैदा होने से पहले ईश्वर ने और प्रकृति ने बनाए रखा, उसके प्रति भी हम एहसानमंद रहें, ये देव ऋण है। तो कहते ये तीनों ऋणों को जब तक आप नहीं चुकाओगे तब तक आप ऋणी रहोगे। इसीलिए हमारे यहां जनेऊ की व्यवस्था होती थी। ये जनेऊ में तीन धागा होता था और ये तीन धागे मरते दम तक रहते थे, क्योंकि जब तक तुम्हें लगे कि तुमने तीनों ऋण चुका दिया तो फेंक दो। अरे समाज में इसकी बड़ी महिमा है, यज्ञोपवीत की, जनेऊ की। अब धीरे धीरे आर्य समाज में कुछ चीजें खत्म हो रही है। ये तीन ऋण जब तक चुक जाए तब उठा देना। इसीलिए जब व्यक्ति सन्यास आश्रम में दीक्षा लेता है तो जनेऊ फेंक देता है। सन्यास में जाने का मतलब मैंने ये काम पूरा कर दिया। मैं वो नहीं कह रहा हूं आजकल के सन्यासी क्या करते नहीं करते, पर नियम जो मैं बताता हूं, सन्यासी में ये जनेऊ नहीं होता है, क्योंकि जिसने तीन ऋण पूरा कर दिया हो, नहीं तो मृत्यु के बाद मृत्यु के समय आपके कंधे से जनेऊ उतरता है, क्योंकि ऋण चुकाना मुश्किल है। ये भाव बना रहना चाहिए। मनुस्मृति में अगला श्लोक है, आयुर यशो बलम वित्तम आकांक्षद्भि प्रियाणि च पितैवाराधनयोग्रे दैवतम हि पितामह। मैं जरा साफ कर दूं, मैं आज पिताओं के बारे में बोल रहा हूं, माताओं को दुखी नहीं होना, क्योंकि माताओं के बारे में बोल चुका था और शुरू में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी हालत में मां ज्यादा कष्ट सहती है, पर आज पिताओं का दिन है। जो व्यक्ति पिता को सम्मान करता है, पिता पिता माता को, उसे क्या क्या मिलता है? आयु, उसका उम्र बढ़ता है, ठीक है, यश, उसको यश मिलता है, बल मिलता है, धन संपत्तियां मिलते हैं, दूसरों का प्यारा बनता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे होता है? वो भजन गा रहे थे शुरू के, हम साथ साथ हैं फिल्म के वो गाना है, बड़ा सुंदर गाना है जो शुरू में आप गा रहे थे। भगवान तो है पर हमें कभी देखा नहीं है, पर माँ बाप भगवान होते हैं। जब उनका आशीर्वाद होता है, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद कुछ फलता फलता नहीं है, माँ बाप का आशीर्वाद क्यों? क्योंकि वो दिल से होता है। वो ना भी बोले, वो जरूरी नहीं कि सर सर पर हाथ रखो, ये बकवास है, वो दिल से निकलता है। उधर बाप गाली दे रहा होगा बेटे को, नाला कहीं का, यहां तो ये शब्द बुरे माने जाते हैं पर भारत में बड़ा प्यारा शब्द होता है, बाप बेटे को नालायक बोलता है पर अंदर से दिल पिघलता है, वो आशीर्वाद निकलता है। कुछ लोग तो आशीर्वाद भी ऐसे देते हैं बेटे को, जा नालायक सब ठीक हो जाएगा पुराने लोग ऐसे ही होते हैं, हो सकता है आप में से बहुत होंगे जिनके पिताजी थोड़े पुराने विचार के हैं, वो ऐसे ही बात करते हैं। पिता माता का जो आशीर्वाद है, जो मुंह में कभी बोलते नहीं है, जिनके दिल से 24 घंटे निकलता है, दुआएं होती हैं, उसी से व्यक्ति आगे बढ़ता है। एक हिंदी में बड़े अच्छे कवि हुए, ओम व्यास ओम करके, यहां भी आते होंगे, तो उनकी कविता है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा हिंदी में, मुझे मिला बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा आपको सुनना चाहिए। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है, दोबारा सुने, पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है, पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है, पिता उंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है, पिता कभी कुछ खट्टा कभी खरा है। पिता मीठा कम होता था, खट्टा और खरा होता। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है, अनुशासन समझते हैं ना, डिसिप्लिन। पिता धौंस से चलाने चलने वाला प्रेम का प्रशासन है, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था, उसके प्यार धौंस में आता है क्योंकि उसको एडमिनिस्ट्रेट करना है, उसको संभालना होता है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, आज बदल गया, आज मां भी कमाती है, पर उन दिनों पिता कमाता था। तो पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता अपदर्शित अनंत प्यार है, ये समझ में नहीं आया, पिता अनंत प्यार है, उसके अंदर तो अनलिमिटेड प्यार है पर अपदर्शित गलत तरीके से दिखाया गया प्यार है, वो जब उसको एक्सप्रेस करता है बड़े बुरे तरीके से एक्सप्रेस करता है तो बच्चा नाराज रहता है बाप से। पिता है तो बच्चों को इंतजार है, पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है, इसका भाव है, ईश्वर को संसार से प्रेम था इसलिए बाप भेजा। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है, पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है, खुद फटे कपड़े पुराने पहन करके भी बच्चे को अच्छा पहनाना, ये तो आप भी करते हैं जो पढ़े लिखे और है, खुद कैसा भी कपड़ा पहन लेते हैं पर बच्चे के लिए हमेशा, हर घर में आप देखेंगे मां बाप से बच्चों के कपड़े ज्यादा महंगा मिलेंगे, तो बच्चा छोटा हो या जवान हो। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है, पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है, पिता एक जीवन को जीवन का दान है, पिता दुनिया दिखाने का एहसान है, पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं उन पर अभिमान करो। समस्या होती है, सभी नहीं, कुछ लोग जो बड़े हो जाते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं, खास करके ये टीन एज में ये लक्षण दुनिया में हर जगह दिखता है, जवानी तक, कि मेरे बाप तो पिछड़ा है, बैकवर्ड है, मैं ज्यादा ही समझता हूं। पिता अनपढ़ अंगूठा छाप हो तो भी उस पर अभिमान करना चाहिए, उसके अंगूठा छाप से तुम्हें मतलब नहीं, वो पिता है तो तुम आज डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, प्रोफेसर बने, बिजनेसमैन बने, कुछ भी बने। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी उनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं, यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं। वो खुश नसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप की आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। कवि को धन्यवाद करिए, कितना अच्छा लिखा, ये ओम व्यास ओम करके बड़े अच्छे कवि हैं, अपने दिल से लिखा है, मुझे लगा ये सुनाना चाहिए आपको। और हम अंतिम के पड़ाव पर आते हैं। तो मनुस्मृति कहता है, अंतिम श्लोक है, उपाध्यायम पितरम मातरम च ये भी द्रुहंते मनसा कर्मणा वा तेषां पापं भ्रण हत्या विशिष्टं तस्मान्नान्य पापकृदस्ति लोके। इसको पढ़ लीजिएगा। जो लोग अपने मां बाप और गुरुओं के प्रति शत्रुता करते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, उनको शरीर कर्मों से या मन से या वचन से कष्ट देते हैं, उनका दुनिया में सबसे ज्यादा पाप, वैसे सबसे बड़ा पाप दुनिया में माना जाता है भ्रूण हत्या का पाप हमारे शास्त्रों में, पर दुख की बात है कि हिंदुस्तान में ही सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या होती है। पर कहते हैं भ्रूण हत्या तो दुनिया में सबसे बड़ा पाप है, पर जो लोग अपने मां बाप को कष्ट देते हैं वो उससे ज्यादा पापी होते हैं, इससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी जो पाप तो है ही, ये एहसान फरमोशी होती है, ये कृतज्ञता होती है जब हम अपने माँ बाप को सम्मान नहीं देते। आज के इस पितृ दिवस पर, फादर्स डे पर, हम सब अपने अपने पिताओं को नमन करते हैं। ईश्वर इस पितृ कुल को बढ़ाए मातृ कुल के साथ, तो ये जो संतति परंपरा है, जो संतान परंपरा, और फूलती रहेगी। ओम शांति।